ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। और आप सभी को मधुवन में आते ही सबसे पहले आपको क्या मिल रहे हैं? सौगात, अर्थात यहां जो भी बाबा का बनता है उसको क्या मिलेगा? सत्यु की सौगात तो मिल ही जाएगी। हाँ, यहां जो भी आएंगे सब कहां जाएंगे? सत्युग में जरूर जाएंगे। लेकिन सत्युग में ऊंच पद प्राप्त करने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है वो बात अलग है। सत्युग में तो जाएंगे लेकिन पद कैसा पाएंगे? ऊंचा पद अगर लेना है, चाहे कोई लास्ट में आए हैं, चाहे कोई बहुत सालों से ज्ञान में चल रहा है, मेहनत करनी है। वैसे तो बाबा दो मेहनत कहते हैं, एक है बाबा को याद करने की मेहनत और दूसरी है आत्माभिमान। दो ये मेहनत करेंगे तो सत्युग में क्या मिलेगा आपको? पद ऊंच मिलेगा। तो उसमें से आज हम आधा घंटे के लिए यही चर्चा करेंगे कि हम आत्माभिमान, क्योंकि जैसे आप यहां ज्ञान में आते ही पहला लेसन कौन सा होता है? आत्मा का लेसन। तो इसीलिए आज सभी आप मधुवन में आए हैं, तो मधुवन में भी आप सभी को यह पहला लेसन क्या करना है? पक्का करना है। और वैसे ही यही एक लेसन, ऐसा लेसन है इस ज्ञान मार्ग का, बहुत महत्व का लेसन है। अब देखो पिछले बार भी बाबा आए 24 तारीख को, तो बाबा ने उसमें भी बच्चे ध्येय भान के मिट्टी में पांव नहीं रखो, भ्रुकुटी सिंहासन के तकत पर बैठो। तो कौन सा लेसन पक्का कराया? आत्मा का। सचमुच इस मार्ग में अगर हमें सहज योगी, कर्म योगी, लास्ट से फास्ट जाना है तो यह आत्मा का लेसन हमें क्या करना है? पक्का करना है। हमारे जीवन की सभी समस्या का कारण है देह भान। आज कई बोलते हैं पता नहीं ये संस्कार मेरा बदलता नहीं, ये विकार मेरे से छूटता ही नहीं। क्यों नहीं छूटता? अगर देह भान है विकार नहीं छूटेगा, वो संस्कार नहीं बदलेगा। तो अगर संस्कारों को बदलना है, विकारों से बच करके रहना है, तो कौन सी मेहनत करनी है? ये आत्मी। कई कहते हैं पता नहीं हम आपस में बहुत संस्कार के वश हो जाते हैं, दूसरे की बहुत बुराई नजर आती है। बुराई किसको नजर आते हैं? ये बहान में है उसको दूसरे की बुराई नजर आते, वो किसी के साथ उसको बनेंगे नहीं। इसीलिए अगर सचमुच ये आत्मा का लेसन पक्का करें तो आपके जीवन की सभी समस्या खत्म हो जाएगी। कई बोलते पता नहीं योग अच्छा लगता ही नहीं मेरा, योग में हम ज्यादा समय टिक नहीं सकते। कौन टिक नहीं सकेगा? जो आत्माभिमानी नहीं है योग में ज्यादा समय टिक नहीं पाएगा। बाबा के पास वही लंबा समय तक बैठ सकता है जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है। देह भान वालों को उनमें ऊपर जाता है उसको घर दरवाजा ही नहीं खुलता, ना अव्यक्त वतन का खुलता है ना परम धाम का। इसीलिए बाबा कहते बच्चे तुम मेरे पास आओ लेकिन पहले क्या समझो? आत्मा समझो, फिर मेरे पास आ जाओ। लंबा समय तक बैठ सकते, आत्मा अभिमानी बनने के हमें बार बार क्या करने? मेहनत करने। जब हम खुद को भूल जाते हैं तो खुदा क्या होता है? भूल जाता है। अब बाबा 15 तारीख को आने वाले हैं, अभी भी हमारे पास 5-6 दिन बाकी है। तो इसी 6 दिन में अगर बाबा के साथ बहुत अच्छा मिलन करना है, कुछ भरपूर होकर के जाना है, शक्तिशाली बनकर के जाना है, तो ये मेहनत करनी आवश्यक है। बाबा के साथ मिलन की मेहनत अनुभव वही कर सकता है जो आत्मा अभिमानी होकर के बैठता है, उसको बहुत अच्छा अनुभव होगा। इसीलिए अभी ये 4-5 दिन में हमें ये आत्माभिमानी स्थिति की धुन लगानी है। तो ये दे के जाएगा, बहुत भरपूर करेगा और इसी मिलन से अब कर्म क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर्मयोगी सहज योगी बनकर के रहेंगे। इसीलिए आत्मा का पाठ जरूरी है। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाते तो क्या करते हैं, क्या नए फाउंडेशन मजबूत होता है। अगर कोई बिल्डिंग का फाउंडेशन रेत के ऊपर है तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इसी तरह हमारा भी ये फाउंडेशन है आत्माभिमानी स्थिति, और जिन्होंने इस ज्ञान मार्ग में आत्माभिमानी की स्थिति का फाउंडेशन कच्चा रखा है, वो पक्का नहीं है, तो उसकी जीवन रूपी बिल्डिंग विघ्नों में समस्या में फेल हो जाते हैं। अगर कोई विघ्नों में आप फेल हो जाते हैं, कोई समस्या में आप फेल हो जाते हैं, इसका मतलब आपका आत्मा का लेसन कच्चा है। इसीलिए हमें क्या करना है, इस मेहनत ब्रह्मा बाबा ने कौन सी मेहनत की, ब्रह्मा बाबा ने सुनते हैं ना बाबा की डायरी है, बाबा ने लिखी थी मैं आत्मा हूं, जेशोद आत्मा, ये आत्मा आत्मा आत्मा। आज सचमुच हम अपना हाथ रख करके पूछे, ये आत्मा की लेसन हम कितना पक्का कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। बाकी सेवा में मेहनत करते हैं और बातों में मेहनत, आत्माभिमानी बनेगा उसकी सभी मेहनत छूट जाएगी। कम समय में आप बहुत सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आत्माभिमानी बनने से वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है, संकल्प में सिद्धियां प्राप्त होती है। इसलिए जिसने ही आत्मा की मेहनत की है उसके लिए बाकी सभी मेहनत छूट जाएंगे। आज याद की भी मेहनत क्यों लगती है, क्योंकि आत्मा की मेहनत, आत्माभिमानी बनने की मेहनत नहीं करते, इसलिए फिर याद की मेहनत लगती है। इसलिए आत्मा का पाठ एक पक्का करना, जब हम आत्माभिमानी बनते हैं वही राजा बन सकता है। स्वराज्य अधिकारी सो भविष्य का राजा है, बाबा ने कहा ना ब्रुकुटी के तकत, तुम्हें तीन तकत में, दूसरा है बाप के दिल तकत और तीसरा है भविष्य का राज्य का तकत। जो ब्रुकुटी के तकत पर बैठता है, आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, उसको ही बाबा के दिल का तकत मिलता है। जो ब्रुकुटी के तकत पर नहीं रहता, आत्माभिमानी नहीं रहता, उसको बाबा के दिल पर तकत पर बैठने का चांस नहीं है। और जो संगम युग में बाप के दिल तकत पर नहीं बैठेगा, वो भविष्य के तकत पर भी नहीं बैठेगा। भले वो सत्युग में आएगा लेकिन तकत में नहीं बैठेगा, दास दासी या कोई और। तो भविष्य के राज्य के तकत का आधार क्या रहा, भ्रुकुटी का तकत। और जब भ्रुकुटी का तकत मिलेगा तो बाबा का तकत तो मिल ही जाएगा। तो इसीलिए हमें आत्माभिमानी स्थिति की मेहनत करनी है, और इस मेहनत से ही जीवन में सहनशीलता, नम्रता, मधुरता, धैर्यता, ये सब गुण आएंगे। अगर सत्यु के संस्कार मुझे अपने जीवन में लाना है, वो संस्कृति मुझे अपने जीवन में लानी है, तो क्या चाहिए, चाहिए। क्योंकि जो आत्मा भी वो बेहद के वैराग्य रहेगा, वो कोई भी वस्तु के तरफ आकर्षित नहीं होगा, उसका ना वस्तु में आकर्षण होगा, ना कोई व्यक्ति में आकर्षण होगा। और ऐसी आत्मा ही सत्युग में जा सकते हैं। अगर आकर्षण होगा तो सत्यु की लेकर के रात भर नींद भी नहीं आएगी। सत्युग में वहां बहुत अच्छे अच्छे शरीर होंगे, एक दूसरे के तरफ, शरीर के तरफ भी आकर्षण जाएगा। इसीलिए अगर सत्युग में जाना है तो यह आत्मा का पाठ हमारा पक्का चाहिए। आत्माभिमानी स्थिति में रहना कभी भी अधीन नहीं होता, और जो अधीन नहीं होता वही अधिकारी बनता है। जो अधीन है वो कभी अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए हमें इस मेहनत में थोड़ा टाइम देना है। और जो स्वयं का अपनी आत्मा को देखेगा वो फिर दूसरे को भी नहीं देखेगा। जिसको अपनी आत्मा दिखाई नहीं पड़ती वो सारा दिन व्यर्थ को देखता रहेगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। आज कोई किसी की बुराई नजर आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि हम आत्माभिमानी स्थिति में नहीं है, मेहनत करनी है। लेकिन ये आत्मा का पाठ हम पक्का कैसे करें, वो तो आपको महत्व बताया इतना सारा, लेकिन उसको प्रैक्टिकल हम कैसे अनुभव करें, उसके लिए एक 5-6 टिप्स आपको बताते हैं, 5-6 बातें। अगर ये बातों को आप करेंगे तब जाकर के आप आत्मा का अनुभव, अगर मुझे आत्मा का अनुभव करना है तो पवित्रता की धारणा की तरफ थोड़ा ध्यान देना है। ताकि कमी है तो हम आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आत्मा क्यों? पवित्रता और आत्मा अभिमानी स्थिति, इसका क्या कनेक्शन है? जैसे पहले जमाने में एक चिमनी आती थी, देखा होगा ना, चिमनी या दीवा कहते हैं उसको, उसके अंदर केरोसिन रहता है। जब केरोसिन डालते हैं लगाते हैं, वो दीवा क्या होता है, चिमनी जलती है, उसके फ्लेम जलती है। अगर वो चिमनी के अंदर तेल नहीं है, माचिस लगाओ तो क्या हो जाएगा, जलेगा। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि उसके अंदर केरोसिन नहीं है। इसी तरह ये शरीर भी हमारी एक चिमनी है ना। जब हम योग में बैठते हैं, अगर चारों तरफ बैकग्राउंड बना दो, एक चिमनी का आकार आ जाएगा। चिमनी में जितना यह पवित्रता रूपी केरोसिन है तो आत्मा अभिमानी स्थिति का दीपक जलता रहेगा। इसीलिए बाबा ने यहां आने वालों को, चाहे कोई पुराना है चाहे कोई नया है, सबके लिए करना दिए हैं, बच्चे तुम पवित्रता की पालना करो, बच्चे तुम पवित्र रहो। तो जिसके पास ये पवित्रता की शक्ति है उतना वो सोल कॉन्शियस का अनुभव सहज कर पाता है। अगर मुझे आत्मा का अनुभव नहीं होता, मेरा आत्मा का दीपक नहीं जलता, इसका मतलब पवित्रता की कमी है। और पवित्रता केवल पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य के बात नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जितना हमारे पवित्रता की क्वालिटी ऊंची है उतना दीपक जलता रहेगा। हाँ, कोई दीपक का उजेरा थोड़ा सा होता है, कोई जो मरकुरी बड़ा की लाइट भी ज्यादा होती है। इसी तरह जिसकी लाइट जितनी ज्यादा उतना वो राजा भी बड़ा। इसीलिए हमें कोशिश करके संगम युग में जितनी पवित्रता की अच्छी धारणा करेंगे उतनी हमारी लाइट भी ज्यादा। इसीलिए पवित्रता के द्वारा ही हम आत्मा अनुभव कर सकते हैं। तो ये पवित्रता की धारणा। दूसरी बात है, हमने पवित्रता तो धारण की लेकिन अगर स्मृति में नहीं रहेंगे तो भी आत्मा ही बन पाते हैं। क्यों? जितना हम स्मृति में रहते हैं उतना हमारी पवित्रता की ऊर्जा ऊपर चलते हैं। और इसीलिए पवित्रता के साथ साथ स्मृति, अगर आत्मा अभिमानी स्थिति में रहना है, दूसरी बात है आत्मा अभिमानी स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों को कम से कम और सकारात्मक चलाने का प्रयास करना है। जितने हमारे संकल्प कम और पॉजिटिव बचेगी और उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। इसीलिए बाबा क्यों कहते हैं, बच्चे क्या करो, व्यर्थ से मुक्त बनो। जितना हम व्यर्थ से मुक्त बनते हैं, अपने संकल्प को बचाते हैं, उतना हम आत्मा अनुभूति कर पाते हैं। इसीलिए हमें संकल्प को अपने बचाना है। उसका तो विस्तार में बाद में आपको बताऊंगा किस तरह से हम वेरस से बचे। तीसरी बात है, अगर मुझे आत्मा का अनुभव करना है तो आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है कौन से, शांत शक्ति स्वरूप गुण है, जितना वो सात गुणों के स्वरूप में रहेंगे उतना हम आत्मा की शक्तियों को जागृत करके हम आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। ये सात आत्मा के मूल गुण है, इस मूल गुण के हमें स्वरूप में स्थित रहना है। इसीलिए बाबा ने कहा ना, रोज कोई ना कोई झूले में बैठो, अलग अलग प्रकार के आपको झूले दिए हैं, अगर ये झूले में बैठेंगे तो आत्मा की शक्तियां जागृत होंगी और जिसे हम आत्मा अनुभूति कर पाएंगे। शुरू शुरू में हम जब इस ज्ञान मार्ग में आए थे तो मैंने क्या किया था, सात दिन जो सप्ताह के हैं तो सात दिन के लिए सात गुणों को फिक्स किया था। सोमवार के दिन शांत स्वरूप का अभ्यास, बस और कुछ नहीं, शांत स्वरूप में रहना है। मंगलवार के दिन शक्ति स्वरूप के अनुभव का अभ्यास, बुधवार के दिन आनंद स्वरूप का अभ्यास। तो ऐसे सात दिन के लिए सात स्वरूप फिक्स किए थे और इस सात स्वरूप के अभ्यास के कारण मुझे आत्मा का अनुभव करना बहुत इजी हो गया। केवल आत्मा नहीं बन पाएंगे, उसके लिए ये युक्ति है। वास्तव में जितनी हम शांति को बढ़ाएंगे उतने आत्मानुभूतियों को बढ़ाएंगे, आत्मानुभूति कर पाते हैं। जितना हम अपने आनंद को बढ़ाएंगे उतना हम आत्मानुभूति कर पाते। तो ये सात गुणों की कमी, यही हमारा देहाभिमान है। देहाभिमान क्यों आता है, शांति की कमी हो जाते हैं, आनंद की कमी हो जाते हैं, शक्ति की कमी हो जाते हैं और जिसके कारण क्या आता है, देहभान आता है। इसीलिए सात गुणों के अभ्यास करेंगे तो हम आत्मानुभूति कर पाएंगे। चौथी बात है, अगर मुझे आत्मा का अनुभव करना है, आत्माभिमानी स्थिति में रहना है, उसके लिए हमें विधि पूर्वक योग की आवश्यकता है। जब भी हम योग करना है, अगर विधि से आत्माभिमानी बनेंगे, अगर एक घंटा योग लगाया बाहर गए लेकिन आत्मा का अनुभव हुआ ही नहीं, इसका मतलब जो आपने आधा घंटा एक घंटा जो योग किया वो विधि से नहीं था। जैसे मोबाइल को जब आप विधि से चार्ज करते हैं तो क्या होता है, उसकी बैटरी चार्ज हो जाती। इसी तरह जब हम योग लगाते तो योग लगाते समय विधि से करना है। विधि से अर्थात बुद्धि को कहां लगाना है, मन को कहां लगाना है, मन में क्या विचार लगाना है। अब योग में तो बैठ गए, मन बुद्धि कहीं नीचे भटक रहे और लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है और योग लगा रहे, तो क्या योग में शक्ति मिलेगी, आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएंगी। जैसे मोबाइल को ला करके प्लग के पास रख दिया, रख तो दिया लेकिन उसकी तारे प्लग में नहीं डाली तो क्या मोबाइल चार्जिंग होगा। केवल मोबाइल को प्लग के पास लाने से मोबाइल चार्ज नहीं होता। इसी तरह हमने रख दिया लेकिन मन बुद्धि की तार परमधाम में नहीं लगाई तो कैसा चार्ज। इसीलिए केवल आकर के संगठन में बैठना, लाल लाइट में बैठना, आंखों से बाबा के फोटो को देखना, यही योग नहीं है। लेकिन मन बुद्धि को चेक करो कि मन बुद्धि कहां है, स्विच चालू करो। बाबा ने जो सोमान दिए, बाबा ने जो हमें ईश्वरी योग लगाएगा वही क्या बनेगा, आत्माभिमानी स्थिति में रहेगा। इसलिए मैं जब भी बिल्कुल लगन में मगन होकर के योग लगा दो, हमें कोई भी बातें याद ना है, नहीं तो योग में बैठेंगे बाबा कमरे में, मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, सोचेगा वो माताजी जो नई नई आई उठ के गई तो ना पीछे मुड़कर देख रहे, फिर कहे मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, सोचेगा अच्छा है तो कैसेट भी लेना है वो, फिर आज ऊपर घूमने के लिए भी जाना है, फिर कहेगा मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर पूरा हो गया चल पड़े, हाँ उसको थोड़ी योग कहेंगे। तो इसलिए जब भी थोड़ा देर बैठो, ये सब दुनिया की बातें और बातें उस सब से फारिक होकर के फिर बैठो और तब जाकर के जब विधि से लग कहां पहुंचे हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं, बाबा के पास आए, बाबा हम आपके मधुवन में शरीर से द्वारा आए, लेकिन अब मैं मन बुद्धि से आपके पास आई हूं। तो ऐसे लगन में मगन होकर के बैठो, मन बुद्धि से कोई भी बातें याद ना आए, तब आप अगर योग से उठेंगे तो आत्मानुभूति कर पाएंगे। और जो आत्मानुभूति करता है उसको ये संसार, संसार की बातें, कोई अपमान करता है, निंदा करता है, वो सब बातें फीकी लगेंगी, क्योंकि आत्मानुभूति के सामने संसार की सारी बातें फीकी है। इसलिए कोशिश करके विधि से योग लगाने का प्रयास करना है। तो पहली बात कौन सी सुनाए, आत्माभिमानी बनने के लिए पवित्रता की धारणा। दूसरी बात कौन सी सुनाई, संकल्प को कम से कम चलाएं। तीसरी बात कौन सी बताई, जो आत्मा के जो सात ओरिजिनल गुण है उस गुणों के स्वरूप में टिकना। चौथी बात कौन सी बताई, विधि पर योग लगाना। पांचवी बात आए, अगर मुझे आत्माभिमानी स्थिति में रहना है, अनुभव करना है, अमृत वेलय का योग पावरफुल चाहिए। जितना आप अमृत वेला योग करते हैं उतनी सारा दिन क्या रहेगी, आत्माभिमानी स्थिति रहेगी। अगर अमृत वेला ढीला है, हां आंखें बंद है, योग लगा रहे, आंखें बंद है, तो बाबा की शक्ति कैसे आएगी। अब समझे किसी मेहमान को घर में बुलाते बजे हमारे घर में आ जाना, हम दरवाजा खिड़की लगा करके अंदर चुप सो गए तो क्या हो जाएगा। तो इसी तरह बाबा कहेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करने। बाबा तो आ गया, बुलाया, लेकिन आंखें बंद करके ओम शांति, मना दरवाजा खिड़की लगा करके अंदर, तो ये नहीं है। आंखें खोल करके बैठो, मेहमान घर में आया, उसी तरह अमृत वेला उठेंगे लेकिन बस कुछ नहीं बोलेंगे, देखते रहेंगे, नहीं, उससे बातें करो। वो मीठे बाबा, आपने तो मुझे अपनाया, मुझे कितना ज्ञान सुनाया, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा, तब जाकर के वो योग में शक्ति मिलेगी। तो जितना आप अमृत वेला बहुत अच्छा करेंगे, अलर्ट होकर के बैठेंगे, विधि पूर्वक बैठेंगे, तब आपको सारा दिन आप कैसे रहेंगे, सोल कॉन्शियस में रहेंगे, आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे। इसीलिए अमृत वेले का मेरी कैसी बीतती है चेक करो। छठी बात है, अगर मुझे आत्मानुभूति करनी है, आत्माभिमानी निरहंकारी अर्थात कोई भी प्रकार का अभिमान न हो, ना कोई कला का अभिमान, ना कोई गुणों का अभिमान, ना कोई विशेषता का अभिमान, जितना जो निरहंकारी रहता है उतना क्या रहेगा, निराकारी रहेगा। अगर मेरी निराकारी स्थिति नहीं रहती, अगर मुझे आत्मा का अनुभव नहीं होता, इसका मतलब मुझे कोई मान वाला कभी भी निराकारी स्थिति में नहीं रह सकता। इसलिए सभी प्रकार का अभिमान क्या करना है, छोड़ना है। बाबा ने कहा ना अभी, ये मैं जो सोचता हूं वही राइट है, मैं कहता हूं वही राइट है, ये मैं, और जो ये इस मैं में रहने के स्वरूप में नहीं रह सकता, क्योंकि जो मैंपन की स्थिति में रहता है, ये मैंपन एक प्रकार की देहबान की मिट्टी है। मैं इतना से वाला हूं, मैं इतना सारा करता हूं, मुझे कोई पूछता ही नहीं, तो अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग होती है। और जिसको अपमान की फीलिंग होता है वो आत्मा के स्वरूप में कैसा रहेगा, वो रोता रहेगा, मुझे उसने ऐसा बोला, मेरे को सम्मान नहीं किया, वो परचिंतन करता रहेगा, प्रदर्शन करता रहेगा, वो आत्मा का स्वरूप औरों से किनारा करेगा, उसको गुस्सा भी आएगा, संकल्प की स्पीड बढ़े जाएगी, वो आत्मा का स्वरूप का अनुभव कैसे करेगा। इसीलिए निरहंकारी बनने की कोशिश करना है। निरहंकारी वाला हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर के चलेगा, कैसा कोई रावण भी हो उसका, लेकिन उसके अपमान को भी वो वही उन्नति का साधन बना करके चलेगा। इसलिए निरहंकारी बनने की यह पुरुषार्थ बड़ा आवश्यक है। और जैसा हम ज्ञान में चलते हैं, जैसा ज्ञानी बनते हैं, जैसा सेवा करते हैं, यह अभिमान आना शुरू हो जाता है। इसीलिए अभिमान को नजदीक आने नहीं देना है। इसीलिए बाबा ने तीन शब्द बताए, चलते चलते बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने जब अंतिम समय शरीर छोड़ा, उसी समय जाने से पूर्व बाबा की जो मुरली चली थी, बाबा ने मुरली चलाई, फिर दरवाजे के पास गए, फिर बाबा ने मुड़ करके सभी बच्चों को कारी बनो, निर्विकारी बनो, और निरहंकारी बनो। ये तीन शिक्षा में टोटल ज्ञान समाया हुआ है। जो निराकारी है वही निर्विकारी बन सकता है, और निर्विकारी बनने के लिए निरहंकारी बनने के लिए निराकारी बनने के लिए निरहंकारी बनने की आवश्यकता है। जितना हम निरहंकारी उतना क्या बनेंगे? निराकारी। तो चेक करना, ये अभिमान तो मेरे अंदर तो नहीं है। अभिमान एक प्रकार का जहर है। अब इतना सारा हमने किया और उसमें मैंपन आया, जो किया उसका फल भी नहीं मिलेगा, बल भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें क्या करना है? निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। और निरहंकारी वाला ही निश्चिंत रहता है, वही निरसंकल्प रहता है, वही शांत स्वरूप में टिक सकता है, वही अंतर्मुखी रह सकता है, वही एकाग्र रह सकता है। योग में माया आते, मतलब कोई राक्षस आकर के हिलाता है? योग की माया क्या है? किसने अपमान किया, निंदा की, ग्लानी की? जब योग में बैठेंगे, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला। ये अभिमान वाला संस्कार होने के कारण वो बातें दिल में लग गई, फिर औरों को सुनाएंगे, उसमें स्वयं कटते हैं। अगर निराकारी बनना है तो निरहंकारी बनने का प्रयास करना है, और निरहंकारी बनने के लिए जितना सोमान में रहेंगे इतना उतना ये अभिमान का जहर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये आत्मा का लेसन पक्का करने के लिए केवल एक और अभिमान भी है, साथ में वेरत संकल्प भी चल रहे, अमृत वाला ठीक नहीं है, तो हम कैसे निराकारी बन सकेंगे? ना पवित्रता की धारणा ठीक है, केवल आत्मा आत्मा कहने से आत्मा नहीं बनेंगे। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिकल 5-6 बातें आपको सुनाई। अगर इन 5-6 बातों को आप अपने जीवन में लाते हैं, तभी रिजल्ट में आत्माभिमानी बनेंगे। हमारे दो लक्ष्य हैं, एक है संगमयुग का लक्ष्य और दूसरा है सत्ययुग का लक्ष्य। सत्ययुग का लक्ष्य क्या है? देवी देवता बनना, ऊंच पद प्राप्त करना, यह सत्ययुग का लक्ष्य। और संगम का लक्ष्य क्या है? निराकारी बनना, अशरीरी बनना, बिंदुर बनना, बाप समान बनना, फरिश्ता बनना, यह हमारा संगम का लक्ष्य है। और याद रखना है, जो संगम के लक्ष्य तक जाएगा उसको ही क्या मिलेगा? भविष्य का लक्ष्य मिल जाएगा। जो संगम के लक्ष्य तक गया ही नहीं, जिसने निराकारी का अनुभव नहीं किया, निर्विकारी का अनुभव नहीं किया, बिंदुरूप का अनुभव नहीं किया, तो सत्युग में कैसे जाएंगे? इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इस निराकारी स्थिति का अभ्यास की मेहनत करो। भविष्य का लक्ष्य संगम के लक्ष्य की परछाई है। परछाई को बोलना पड़ता है, तुम आ जाओ पीछे। जो निराकारी बनेगा, बिंदुर बनेगा, अशरीरी बनेगा, उसको सत्युग मिल ही जाएगा। अगर आप न भी जा, इसीलिए हमें ये जो मूल अभ्यास है, ये मूल अभ्यास में रहने का पुरुषार्थ करना है। इस मूल अभ्यास से ही हमारे जो अनादि संस्कार है, जो आदि संस्कार है, वो जागृत होंगे। जितना इस मूल स्वरूप में रहेंगे, आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, उतना बाबा भी सहज याद आएगा। तो इसीलिए आप जरूर इस मेहनत के तरफ थोड़ा सा ध्यान देना, इसके लिए समय जरूर नहीं। और उसकी निशानी है कि ये आत्मा स्वरूप में या देह बांध के स्वरूप में, क्या निशानी है? हाँ, 2-3 निशानी आपको सुनाते हैं। अगर कोई अपमान करता, उसकी आपको फीलिंग होती है, ये कौन सा बहाना है? ये देह बहाना है। अगर किसी की बुराई नजर आती है, ये भी मेरा देहाभिमान है, 10% भी नहीं है। तो सचमुच जो निराकारी स्थिति में रहेगा, वो ड्रामा की हर बात को, वाह ऐसा क्यों किया, इसका मतलब ये मेरा देहाभिमान है। ये ज्ञानी होने के बाद भी ऐसा करता है, इसको बदलना चाहिए, बदलना उसको नहीं चाहिए, बदलना खुद को चाहिए। खुद का देहाभिमान के कारण उसकी बुराई नजर आती। इसीलिए अगर आत्माभिमान, जीवन की हर समस्या आपको संस्कारों को बदल सकेंगे। जैसे सीता के सामने जब रावण आता है, लेकिन वो क्या करते हैं? रावण उसको टच भी नहीं करता, हाँ, उसके लिए क्या करते हो, तिल्ली जला करके रख देते। इसी तरह हमारी आत्मा की तिल्ली सदा जलती रहे। चेक करो कि सारा दिन आत्मा की तिल्ली जलती है, या योग करते उस समय थोड़ी सी जल जाते हैं, बाद में सारा दिन बुझ जाते। अगर आत्मा अभिमानी स्थिति की दीपक बुझ जाता है तो अंधेरे में रहेंगे, भटकते रहेंगे, मन बुद्धि भटकेगी। तो इसलिए हमें, और यही हमारा मूल लक्ष्य है, और इसके लिए बाबा आया है। बाबा किसे लिए आया? परमधाम से। बाबा सभी को आत्माभिमानी बनाने के लिए आए। आज अब योग किसी लिए कर रहे हैं? किसी लिए कर रहे हैं? का भोजन नहीं खाना है, पवित्र रहना है, अमृत वाला उठना है, ये सब किसी लिए कर रहे हैं? आत्माभिमानी बनने के लिए कर रहे हैं। ये सब कुछ करने के बाद फिर भी मेरी आत्माभिमानी स्थिति नहीं रहती, इसका मतलब एनीथिंग रॉन्ग, जो हम कर रहे हैं ठीक नहीं है। आज हम सेवा कर रहे हैं, किसी लिए कर रहे हैं? आत्माभिमानी बनने के लिए कर रहे हैं। अगर सेवा करने के बाद भी मेरी आत्माभिमानी स्थिति नहीं रहती, इसका मतलब सेवा में कुछ गड़बड़ी है। जो मैं सेवा कर रहा हूं उसके अंदर मैंपन आ रहा है, कुछ टकराव आ रहा है, मेरा तेरा आ रहा है। इसलिए आत्माभिमानी, हमारे टोटल इस पुरुषार्थ का लक्ष्य आत्माभिमानी बनना। अगर ये नहीं बनेंगे तो अंतिम समय तो पश्चाताप होगा, और आने वाला भविष्य में जो विकराल विनाश है, उस विनाश का सामना हम सहज कर सके, उसको देख सके, उसके अंदर हम अचल अडोल रह सके, उसके लिए क्या चाहिए? आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। और जब हमारे आत्माभिमानी स्थिति रहती है, हमारे अंदर कोई भी विपरीत परिस्थिति को भी सामना करने की, सहन करने की शक्ति रहेगी। अगर कोई बातें हमें सहन नहीं होती, इसका मतलब आत्माभिमानी स्थिति की कमी है। हमारे अंदर कड़े से कड़े कैसे भी संस्कार है, उस संस्कार के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए आत्माभिमानी स्थिति जरूरी। इसलिए हमें अब मधुवन में आए हैं तो इस लेसन को पक्का करने का फिर से क्या करना है? एक दृढ़ संकल्प करना है। अगर ये लेसन पक्का नहीं कर रहे तो हम रास्ता छोड़ करके कहीं और भटक रहे, पुरुषार्थ से हम भटक रहे। इसीलिए इस मूल लेसन को हमें क्या करना है? पक्का करना है। इसीलिए हर मुरली में क्या आता है, बच्चे आत्मा समय बार बार इस लेसन के तरफ ध्यान खिंचवाता है।